खुदावंद के जलाली और मुकद्दस नाम में आप सब की सलामती हो। खुदावंद का शुक्र है कि उसने आज का दिन हम सबको फिर बख्शा कि उसका शुक्र करें और आज के दिन का आगाज उसके पाक नाम से करें, और इसके बाद जो कुछ सीखें, जैसे खुदा का बंदा याकूब कहता है कि ना कि सुनने वाले बने बल्कि सुनकर अपनी जिंदगियों में उसे जगह देकर अमल में लाने वाले बने, क्योंकि यही मसीही जिंदगी का मकसद है कि जहां कहीं भी हम जाएं, हमारा नूर हमारी जिंदगी में मसीह की जिंदगी, उसका इत्मीनान, उसकी तसल्ली, उसका प्यार दूसरों तक पहुंचे। इससे पहले कि हम यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाप उसकी 31वीं आयत से देखें, आपसे सवाल है, क्या किसी को याद है कि कल हमने दो अदालतों के बारे में सीखा था? पहली अदालत कौन सी थी? किसी को याद है कि वो किन के लिए होगी? ईमानदारों के लिए। उस अदालत में क्या दिया जाएगा ईमानदारों को? सजा या अजर? क्या दिया जाएगा उस अदालत में? अजर दिया जाएगा। ईमानदारों को क्या दिया जाएगा? अजर दिया जाएगा, यानी कि हर ईमानदार को उसके काम के मुआफिक सिला, बदला, अजर मिलेगा, या कह सकते हैं कि अनाम मिलेगा। सिला, बदला, अजर, अनाम तब ही किसी को मिलता है जब वो पूरी जांफशानी से अपने भेजने वाले के काम को पूरा करता है। ऐसा ही है जी। तोहफा हम किसे देते हैं? तोहफा यानी कि जो हम अपने दिल में ठहराते हैं किसी को देने के लिए। तोहफा किसी के काम या सरगर्मी या उसकी लियाकत पर नहीं दिया जाता। ऐसा ही है ना जी। तोहफा और अनाम में हमें इसके दरमियान जो फर्क है इसे जानने की जरूरत है। जैसे कि नजात तोहफा है। नजात क्या है? तोहफा है। हम उसे किसी काम से, किसी इमाल से, किसी नेकी से, किसी अच्छे रवैये से या कोई ऐसी कुर्बानी चढ़ाने से हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर निजात क्या हुई? कामों का सिला या बदला हुआ। ऐसा ही होगा ना जी। इसलिए पालूस रसूल, खुदावंद यीशु मसीह, हर एक रसूल, हर एक नबी क्या कहता है कि खुदा के हजूर मकबूल ठहरना, कबूल ठहरना किस लिए, किस तरह है? ईमान से है। तोहफे में और बदले में इस फर्क को जानना बहुत जरूरी है। बहुत दफा ये फरेब का बायस बनते हैं। तोहफा जिसके हम हकदार नहीं, खुदा हमको, हम पर रहम करके, तर्स करके, शफकत का इजहार करके देता है। जैसे कि निजात हमें तोहफे में मिली है, खुदा का प्यार हमें तोहफे में मिला है, खुदावंद की कुर्बत हमें तोहफे में मिलती है, यानी कि बख्शिश के तौर पर। पहली अदालत कौन सी थी? ईमानदारों की अदालत, जहां पर ईमानदारों को क्या दिया जाएगा? अजर दिया जाएगा, जिसके बारे में खुदा यसु मसीह ने मुकाशवा की किताब उसके 22वें बाप की 12वीं आयत में क्या कहा था? देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। अजर। पहली बात, पहली अदालत ये थी। दूसरी अदालत कौन सी थी? किसी को याद है दूसरी अदालत? गैर ईमानदारों की। किन की? गैर ईमानदारों की, यानी जिन्होंने यीशु को कबूल नहीं किया, यानी कि सफेद तख्ते अदालत, जिसमें ईमानदार यीशु मसीह के साथ खड़े होकर उन गैर ईमानदारों का, जिन्हें शरीर फरिश्तों का अंजाम देखेंगे। दूसरी अदालत किन की होगी? गैर ईमानदारों की, जिसे दूसरी मौत भी कहा गया है, आग की झील भी कहा गया है। आए आज हम अपने मुखालफ के बारे में जानते हुए कि उसका ना कि सिर्फ ये मकसद है कि हमें आजमाए, ना कि सिर्फ ये मकसद है कि हमारा दुश्मन है, ना कि सिर्फ ये मकसद है कि हमें गुमराह करे, बल्कि उसका मकसद है कि झूठ बोले। इसलिए यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाप उसकी 31वीं आयत से आपके लिए पढ़ूंगा, गौर से सुने। पस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। उन्होंने उसे जवाब दिया, हम तो इब्राहिम की नस्ल से हैं और कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे। तू क्यों कर कहता है कि तुम आजाद किए जाओगे? यीशु ने उन्हें जवाब दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है, और गुलाम अब तक घर में नहीं रहता, बेटा अब तक रहता है। पस अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम वाकया वाकया ही आजाद होगे। मैं जानता हूं कि तुम इब्राहिम की नस्ल से हो तो भी मेरे कत्ल की कोशिश में हो, क्योंकि मेरा कलाम तुम्हारे दिल में जगह नहीं पाता। मैंने जो अपने बाप के यहां देखा वो कहता हूं, और तुमने जो अपने बाप से सुना है वो करते हो। उन्होंने जवाब में उससे कहा, हमारा बाप तो इब्राहिम है। यीशु ने उनसे कहा, अगर तुम इब्राहिम के फर्जंद होते तो इब्राहिम के से काम करते, लेकिन अब तुम मुझ जैसे शख्स के कत्ल की कोशिश में हो जिसने तुमको वही हक बात बताई जो खुदा से सुनी। इब्राहिम ने तो ये नहीं किया था, तुम अपने बाप के से काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम हराम से पैदा नहीं हुए, हमारा एक बाप है यानी खुदा। यीशु ने उनसे कहा, अगर खुदा तुम्हारा बाप होता तो तुम मुझसे मोहब्बत रखते, इसलिए कि मैं खुदा में से निकला और आया हूं, क्योंकि मैं आपसे नहीं आया बल्कि उसी ने मुझे भेजा। तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? इसलिए कि मेरा कलाम नहीं सुन सकते। तुम अपने बाप अबलीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई नहीं है। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही सी कहता है, क्योंकि वो झूठ झूठा है बल्कि झूठ का बाप है। लेकिन मैं जो सच बोलता हूं इसीलिए तुम मेरा यकीन नहीं करते। तुम में कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है? अगर मैं सच बोलता हूं तो मेरा यकीन क्यों नहीं करते? जो खुदा से होता है वो खुदा की बातें सुनता है। तुम इसलिए नहीं सुनते कि खुदा से नहीं हो। यहूदियों ने जवाब में उससे कहा, क्या हम खूब नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में बदरू है? यीशु ने जवाब दिया कि मुझ में बदरू नहीं मगर मैं अपने बाप की इज्जत करता हूं और तुम मेरी बेइज्जती करते हो। लेकिन मैं अपनी बुजुर्गी नहीं चाहता, हाँ एक है जो उसे चाहता और फैसला करता है। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंत की तारीफ हो। इस पूरी कहानी में इस बात को हम देखेंगे कि यहूदी और खुदावंद यीशु मसीह आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, और खुदावंद यीशु मसीह ने उनको ये सच, ये कड़वा सच बताया। जैसे बहुत सालों पुरानी बात है कि कहा जाता है कि सच बहुत दफा हजम नहीं होता, सच बहुत दफा लोगों को कड़वा लगता है। जैसे मुकाशवा की किताब में जब खुदावंद खुदा ने खुदा के बंदा यूहन्ना को रोया में दिखाया, उस सच को दिखाया, और वो सच कड़वा था, सच कड़वा था, तो खुदा ने कहा कि सच को खा ले, निगल ले, उसके बाद मीठा हो जाएगा। सो यहां पर यीशु मसीह और यहूदियों के दरमियान गुफ्तगू चल रही है। खुदावंद यीशु मसीह ने उनको जो कड़वा सच बताया वो ये था कि तुम अपने बाप अबलीस से हो। इस बात पर गौर करने की जरूरत है, वो यहूदी है जिनको खुदावंद खुदा ने चुना, जिनको खुदावंद खुदा ने लैदा किया, जिनके लिए बरकत चाही, जिनको कहा कि तुम कौमों में मेरे जलाल का बायस बनोगे। खुदावंद यीशु मसीह अपने लबों से यहूदियों को, खासकर रहनुमाओं को, जिनमें फकी, फरीसी, बुजुर्ग और दूसरे तमाम हैकल के जो क्या कहते हैं कि ओदादार लोग हैं, उन सबको खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने बाप अबलीस से हो। क्यों कहा? क्योंकि उन्होंने खुदा के भेजे हुए मसीह को कबूल ना किया। उन्होंने यीशु मसीह को, जिसे मसा किया गया उनकी रहाई के लिए, उसे अपना बादशाह ना माना। और जब यीशु मसीह ने उनको ये कड़वा सच बताया तो उन्होंने कहा, हाँ हम अब्राहम की नस्ल से हैं, हम कभी भी गुलामी में नहीं रहे। वो झूठ बोल रहे हैं। क्यों झूठ बोल रहे हैं? हर वो ईदे फतीर पर जब वो प्याला पीते हैं, जब वो रोटी खाते हैं, उस कड़वे साग पात को खाते हैं, तो वो उस गुलामी को याद करते थे जो उन्होंने मिस्र में काटी थी। जब जब वो शायरबानी, जैसे हम शायरबानी की रस्म में खुदावंद यीशु मसीह के कफारे को याद करते हैं, वैसे ही वो जब फतीरी रोटी, जब वो फसा का क्या करते थे, खाना खाते थे, तो उसमें कड़वा साग पात खाते थे। कड़वा साग पात जैसे कह सकते हैं कि हमारे दौर में करेले हैं। करेले बहुत कौड़े होते हैं, होते हैं ना जी? वो ऐसा साग पात, ऐसी सब्जी बनाते थे जो बहुत कड़वी होती थी। जब वो खाते थे तो वो गुलामी को याद करते थे, उस रोने को, धोने को, उस सारी सारी दुख की घड़ी को याद करते थे। लेकिन यहां पर वो क्या कहते हैं खुदावंद यीशु मसीह को? यीशु मसीह ने उनसे कहा, मैं जवाब में उनसे कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं, जो गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है, और गुलाम अब तक घर में नहीं रहता, बेटा अब तक रहता है। और 35वीं आयत पर जरा गौर करें, 36वीं आयत, और हाँ जी 36वीं आयत, बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम वाकया ही आजाद होगे। और अगली आयत में क्या लिखा है? मैं जानता हूं कि तुम इब्राहिम की नस्ल से हो, तो भी मेरे कत्ल की कोशिश में रहते हो। आगे सारी गुफ्तगू में यीशु मसीह से वो बातचीत करते हैं, और यीशु मसीह उनके उस जख्म पर हाथ रखता है, उस बात को जिसे वो भूले हुए हैं, उस मकसद पर कि तुम अपने बाप अबलीस से हो। क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने उनको कहा कि तुम अपने बाप अबलीस से हो? वो नस्ली तौर पर यहूदी, लेकिन खुदा के उस मसीह को कबूल नहीं कर रहे, इसलिए खुदावंद ने उनको कहा कि तुम इब्राहिम की नस्ल से तो हो, लेकिन इब्राहिम से के काम नहीं करते, इसलिए तुम अबलीस से हो। और ये बड़ी ही कड़वी क्या कहते हैं जबान है, बड़ी ही क्या कहते हैं कि करवाहट से बड़े ही उल्फाज हैं किसी यहूदी को कहना कि तुम इब्राहिम की नस्ल से हो लेकिन उसके काम नहीं करते। क्योंकि वो यीशु मसीह को पहली बात रद्द कर रहे हैं, दूसरी यीशु मसीह से झूठ बोल रहे हैं कि हम कभी गुलामी में नहीं रहे, तीसरी बात वो कह रहे हैं कि हम इब्राहिम की नस्ल से हैं, लेकिन यीशु मसीह कहता कि तुम मेरे कत्ल की कोशिश में हो। इन मजहबी लोगों का जो रवैया है वो क्या है? सच से इनकारी। ये कहानी पढ़ने का मकसद क्या है? कि जब हम सच्चाई से वाकिफ होते हैं, सच्चाई हमें आजाद करती है, लेकिन वजह यह है कि बहुत दफा इंसान आजाद होना नहीं चाहता। ये मजहबी रहनुमा आजाद नहीं होना चाहते थे। इन्होंने क्या किया? झूठ पर झूठ बोला और खुदा को रद्द किया। और यीशु मसीह ने उनको कहा कि तुम अपने बाप अबलीस से हो, यानी कि उसके पैरोकार हो, यानी कि उसके मानने वाले हो, उसके से काम करते हो, क्योंकि वो झूठा है, खूनी है, और वो अपनी ही ख्वाहिशों को पूरा करता है। और यहां पर ये यहूदियों को टोला क्या कर रहा था? यीशु मसीह के कत्ल की साजिश, जिसमें यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम अपने बाप अबलीस से हो जो खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहता, वो सच्चाई को रद्द कर रहे हैं। इसलिए ईमानदार होते हुए हमें इन सच्चाइयों से सच सीखने की जरूरत है। बेहतर है कि अपनी कमजोरी को, अपनी गलती को कबूल कर लेना बजाय के कहना कि नहीं। रूहानी जिंदगी में, हमारी मसीही जिंदगी में, इसके लिए हमारे लिए कौन सा सबक है कि हाँ, बहुत दफा जब हम गुनाह में गिरते हैं तो हम गुनाह के जुए में जुत जाते हैं। जुआ किसे कहते हैं? जैसे दो ढगे ले लें, जब जमीन को वाया जाता है या उसमें काम किया जाता है, तो दो ढगों के ऊपर जो पीछे गड्ढा होता है उसका जुआ, उनके ऊपर होता है सारा वजन। जब जब हम गुनाह में गिरते हैं, बरगश्तगी में जाते हैं, हम दोबारा उस गुनाह के जुए में जाते हैं। इसलिए हम सब जो यीशु मसीह में हैं, आजाद किए गए हैं। इसलिए खुदावंद खुदा बंदा पालूस रसूल कहता है, मेरे साथ देखें, गलतियों 5 बाप, जिसमें हम सब के लिए बहुत ही शानदार सबक है कि हम अपनी जिंदगी का जायजा लें। जो गुनाह, जो नाफरमानी, जो तकबर, जो सख्त दिली का मुजाहरा उस वॉर में यहूदियों ने किया, अपने आप को जांचे, आज हम तो नहीं कर रहे। तो इस आयत को पढ़ेंगे और खत्म करेंगे। गलतियों 5 बाप, उसकी पहली आयत से, पस ए भाइयों, और माजर चाहता हूं जी, मसीह ने हमें आजाद रहने के लिए आजाद किया है, पस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुतो। गलतियों की कलीसिया जब गुनाह में, नाफरमानी में, तकब्बर में, इनकारी में और सख्त दिली के समंदर में डूब गए, तो खुदावंद का बंदा पालूस रसूल कहता है, तुम आजाद किए गए हो, इसलिए आजादी के मुश्ताक रहो, ना कि गुलामी के जुए में जुतो। सो हम सबको भी अपनी अपनी दिल की हालत का हर रोज जायजा लेने की जरूरत है कि कोई गुनाह, कोई सख्ती, कोई आदत, कोई रवैया, कोई सोच, कोई ऐसा अमाल हमें रूहानी तौर पर गुनाह की गुलामी में तो नहीं ले जाता। कोई ऐसी सोच, जैसे कह सकते हैं कि खुदा का कलाम कहता है कि अगर हम दुआ गुजारने के लिए खुदा के जुड़ जाते हैं, उस बंदे की गवाही कि अगर किसी के साथ हमारा रंज है, दुख है, किसी का हमने कोई गुनाह किया है, तो खुदावंद खुदा कहता है कि उसे माफ़ करने की ज़रूरत है, एक दूसरे को माफ़ करने की ज़रूरत है। गुनाह हमें बहुत दफ़ा जंजीरों में जकड़ देता है। तो हमें इस रवैये से, जो यहूदियों का रवैया यीशु मसीह के साथ था, और ये रवैया किस लिए था? क्योंकि वो अपने बाप अबलीस की सुन रहे थे, उसकी मान रहे थे, उसकी ख्वाहिशों को पूरा कर रहे थे। हम ईमानदार होते यहाँ से यही सबक सीख सकते हैं, अपने आप को खाकसार करें, अपने आप को हलीम रखें और खुदावन से कहें कि जांच हमें, पहचान कोई ऐसी खता तो नहीं जिसके बास हमारे और तेरे दरमियान गुलामी का जुआ आ खड़ा हो। सो खुदावंद आपको बरकत दे। आज हम सब किसी ना किसी दुख, किसी ना किसी मुसीबत, परेशानी, दुआ, दरख्वास्त, मनाजात के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। याद रखें कि खुदावंद वफादार है। जैसे एक कहावत है कि खुदा के घर में देर है, अंधेर नहीं। अगर आप ऐसे हालात में से गुजर रहे हैं कि आपके घर के, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी मुश्किल परेशानी है, तो याद रखें कि यीशु मसीह को रहाई देने वाला कहा गया है। वो आपको रहाई दे सकता है, वो आपके दुखों को समझता है, वो आपके हर एक आंसू को गिनता है, वो आपके दिल से निकलने वाली हर एक आह को सुनता है। कभी भी इस बात के फरेब में ना रहें कि उसने आपके लिए अपना आसमान बंद कर दिया या आपको नहीं देखता। उसकी निगाहें आप पर लगी रहती हैं। उसकी निगाहें तब भी आप पर लगी हुई थी जब वो सलीब पर था, क्योंकि उसका सलीब पर चढ़ना हम सब के लिए बरकत का बायस बना। आए हम खुदा के जुर झुके दुआ करें। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे, और सारा जलाल तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को मिले।